करते हैं देवान से न्यारे। ये पांच रूप है मुझको प्यारे, करते हैं देवान से न्यारे। आओ याद करें अपने वो रूप, मैं आत्मानादि स्वरूप, ज्योति बिंदु रूप है
शांति। हम सभी के मध्य परमादरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हैं। आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज विश्व संगठन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिकाओं में से हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, और यहाँ पांडव भवन में जो भी शिविर और भट्टी के कार्यक्रम चलते हैं आप उसके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, आप वो कार्यक्रमों के डायरेक्टर हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय दीदी जी का हम स्वागत करेंगे। आप वो सौभाग्यशाली आत्माओं में से हैं जिन्होंने जिनको बचपन से ही बाबा का ज्ञान मिला। 12 साल की कोमल आयु में साकार बाबा के होते 1960 में ही आपको बाबा का ज्ञान मिला। आपकी पढ़ाई चलती रही, राजयोग का अभ्यास भी चलता रहा और 1969 में आपने अपने जीवन को बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। और आप सबको पता होगा टीवी चैनल्स में जो प्रोग्राम शुरू हुए वो किसके थ्रू शुरू हुए? आप ही वो महान आत्मा हैं जिनके माध्यम से आस्था जी जागरण सोनी ऐसे कई चैनल्स में बाबा के प्रोग्राम्स शुरू हुए। उसके बाद हमारे ये चैनल्स बने हैं और हम जो राजयोग कमेंट्री सुनते हैं, कोई भी बाबा का बच्चा शुरू शुरू में जब योग करना शुरू करता है तो हमें कमेंट्री बजाते हैं और वो कमेंट्री भी किसकी आवाज में है? आपकी आवाज में। बाबा ने ऐसी मधुरता की शक्ति भरी है कि आप अनेक आत्माओं को बाबा से जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। देश विदेश में सैकड़ों देशों में पांचों महाद्वीपों में भ्रमण करते हुए आप बाबा का झंडा लहरा रहे हैं। और आपको पता हो बाबा ने आदरणीय दीदी जी को एक बहुत अच्छा टाइटल दिया, किसको मालूम है? डबल डॉक्टर, हर की पौड़ी। बाबा ने आपसे कहा, बच्ची आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, आप जहां रहोगी वहां सब आएंगे। और आज ये साकार हो रहा है, सारे विश्व की आत्माएं इस पांडव भवन की भूमि की ओर खींच कर चली आती है। तो आदरणीय दीदी जी हमें पांच स्वरूप की अनुभूति कराएंगे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी जी तीन बार ओम शांति कहकर हमें याद दिलाती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, इसमें सारा ज्ञान और योग आ जाता है, सारी धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है। पिछले रविवार को बाबा ने पांच स्वरूपों की ड्रिल कराई, याद है सर, रविवार की मुरली। तो मैंने सोचा कि हम इसका अनुभव करेंगे। वैसे तो हर क्लास में इसका वर्णन तो किया ही जाता है, अभी हमारे सूरज भाई ने भी इसका वर्णन किया, साथ में स्वमान भी बताए। और बाबा ने कहा कि पांच मिनट, हर घंटे पांच मिनट इसका अनुभव करो। चलो पांच मिनट नहीं कर सकते तो पांच सेकंड, परंतु ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मन शक्तिशाली बन जाता है। जैसे वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बाएं मुड़ दाएं मुड़, हाथ ऊपर हाथ नीचे, एक्सरसाइज है ये। तो जहां अंगों को रखने लिए कहते हैं वहां वो अंग रखते हैं, हाथ ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे। तो यहां फिर मन और बुद्धि को जहां चाहें वहां रख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पांच स्वरूपों का अभ्यास आपका हर घंटे ये जरूर होना चाहिए। वैसे तो हर घंटे घंटे एक मिनट का गीत बजता है शांति का, परंतु ये पांच स्वरूप तो एक मिनट से भी कम, अगर पांच सेकंड लें, लेकिन इतना थोड़ा समय में मजा नहीं आता है। मजा आता है पांच सेकंड, ऐसे लगता है पता नहीं गोल 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 घूमना है, नहीं। तो कम से कम एक मिनट तो एक स्वरूप की याद आए और उस स्वरूप की गहराई में जाए। केवल गहराई में नहीं जाए, फिर उसकी अनुभूति भी करें। और ये ऐसा अभ्यास बनाएं जो हम जब जाना चाहें उस स्थिति का अनुभव कर सके और जितना समय करना चाहें उतना समय कर सके। कोई नई नई एक्सरसाइज चालू करता है तो थोड़ा ही करेगा तो थक जाएगा, लेकिन अगर वो अभ्यास करता रहेगा तो वो थकेगा नहीं। तो यहाँ भी अगर ये अभ्यास हमारा नहीं है तो हम जल्दी थक जाएंगे। क्या सोचे आत्मा परम धाम में मन बुद्धि ले जाए, मन बुद्धि द्वारा पहुंच जाए, फिर वहां क्या सोचे? आत्मा सतयुग में पहुंच जाए वहां क्या सोचे? आत्मा पूज्य रूप में आ जाए तो क्या सोचे? ब्राह्मण स्वरूप में आ जाए तो क्या सोचे? फिर फरिश्ता बन जाए तो क्या सोचे? तो क्योंकि वो बनने के लिए पहले सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि सोचने के बाद ही वो स्थिति आती है। तो पहली है स्मृति, हर चीज में पहली है स्मृति। स्मृति अर्थात याद कहो या सोच कहो, क्योंकि जिसके बारे में सोचते हैं माना उसकी याद है। तो बाबा ने शुरू किया है परम धाम से, तो परम धाम में जाना है, फिर सतयुग में जाना है, फिर द्वापर में जाना है, फिर संगम पर आना है, फिर फरिश्ता बनना है, सूक्ष्म वतन जाना है, और उसका अनुभव भी साथ साथ करते जाना है। तो पहले वो स्मृति आएगी, फिर वो अनुभूति होगी, क्योंकि स्मृति से समर्थि आती है, और जैसे समर्थि आई तो उस स्थिति में स्थित होना सहज हो जाता है। और आप देखेंगे ये जितने ही पांच स्वरूप है ये सब आत्मा के पॉजिटिव स्वरूप है। वैसे तो बाबा कहते सतयुग से त्रेता में आए, दो कला कम हो गए। कल बाबा ने कहा कि बृहस्पति की दशा से शुक्र की दशा आ गई, 16 कला से 14 बन गए, गोल्डन से सिल्वर में आ गए। लेकिन वो याद नहीं करना है, नीचे गिरने की बात याद नहीं करनी है, वो तो होगा ही, क्योंकि हर चीज सतो से रजो, रजो से तमो होती है। लेकिन हमको उस रूप से नहीं याद करना है, हमको क्या याद करना है कि हम परम धाम में हमारी स्थिति कहाँ है। तो याद करो, सोचो, नक्शा निकालो, परम धाम में मेरा स्थान कहाँ है। परम धाम में इतनी सारी आत्माएं हैं, हर धर्म की आत्मा है, धर्म पिता की आत्मा है, शिव बाबा की भी आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी आत्मा है, हाँ फिर लक्ष्मी नारायण भी दिखाया है, फिर सतयुग जो थुर है वो भी दिखाया है उल्टा वृक्ष के रूप में, फिर अलग अलग शाखाएं दिखाई है, उनका धर्म पिता ऊपर में दिखाया है और उनकी धर्म की आत्माएं वो शाखा के रूप में उस पेड़ में है। तो इस रूप से भी आप परम धाम को याद कर सकते हो, ये एक स्वरूप है। और फिर दूसरा स्वरूप है कि मैं कहाँ हूं, मैं आत्मा कहाँ हूं उस आत्माओं के झाड़ में। तो कहाँ रखेंगे अपने आप को, बहुत दूर रखेंगे या बाबा के नजदीक रखेंगे? हाँ, बाबा के बहुत नजदीक। लेकिन कौन होंगे बाबा के नजदीक? जो इस समय नजदीक होंगे, है ना, जो इस समय बाबा के दिल तख्त नशीन होंगे, बाबा का दिल जीता हुआ होगा, वही बाबा के निकट परम धाम में रहेंगे, शिव बाबा के भी तो ब्रह्मा बाबा के भी। लेकिन इस समय बाबा का दिल तख्त जीतना है, और दिल तख्त जीतना माना आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, ये सारे गुण बहुत आवश्यक है अगर बाबा का के दिल तख्त नशीन बनना है। तो अगर मैं अपने आप को ये समझ गई हूँ कि मैं हूँ ऐसी, बाबा की हर आज्ञा का पालन कर रही हूँ, बाबा की हर श्रीमत में मैं मजबूत हूँ, बाबा के हर शब्द को हम गहराई से समझ रहे हैं, तो अवश्य मैं बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ। कई प्रश्न करते, पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, हाँ पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, ये पता नहीं हूँ या नहीं हूँ ये कौन सोचता है, कौन सोचता है? हाँ, जो इतना पुरुषार्थी नहीं है। परंतु वो अगर अच्छा पुरुषार्थी है तो वो ये नहीं सोचेगा पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, वो यही सोचेगा मैं हूँ, मैं हूँ, बाबा के बहुत नज़दीक हूँ। अगर ये सोच चलता है कि पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, इसका मतलब है कि सही पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। इसीलिए जो भी हमारी सोच हो वो सब पॉजिटिव हो। फिर देवता स्वरूप में भी आओ तो भी हमारी सोच कितनी पॉजिटिव होनी चाहिए। पता नहीं मैं महाराजा महारानी बनूंगा या बनूंगी या नहीं, हाँ कहीं दास दासी तो नहीं बनूंगी, कहीं चंडाल तो नहीं बनूंगी, कहाँ मैं साधारण प्रजा तो नहीं बनूंगी, ऐसी सोच भी नहीं लानी है। तो क्या सोचना है सत्यु के लिए, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं? विश्व महाराजन हूँ। पहले फर्स्ट विश्व महाराजन तो फिक्स है, लेकिन सेकंड विश्व महाराजन तो अभी तक बाबा ने किसको भी डिक्लेयर नहीं किया है। किया है क्या? किया है किसी मुरली में या संदेश में कि फलानी सेकंड श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे? नहीं, अभी म्यूजिकल चेयर्स चल रही है ना, वो कुर्सियों का खेल चलता है ना, तो कुर्सियों के खेल में सब कुर्सियां खाली है। परंतु म्यूजिक कब पूरा होगा वो पता नहीं ना, इसीलिए म्यूजिक बंद होने का इंतजार है, बस इंतजार में कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। इसलिए उस इंतजार में भी नहीं रहना है, परंतु हमको कुर्सी पर बैठना ही अंदर में निश्चय है कि अवश्य मुझे कुर्सी मिलेगी। तो इसीलिए निश्चय का भी बड़ा खेल है इन पांच स्वरूपों में। तो मेरा पद कैसा होगा, ऊंचा पद होगा, विश्व महाराजन होगा, डबल ताज मेरे सिर पर होगा, है ना। शुरू में दादियों को यही अनुभव कराया ना, बहनें ट्रांस में जाती थी और ट्रांस में जाकर के देखती थी कैसे शहजादे हैं, कैसे उनकी ड्रेस है, कैसे उनका ताज है, कैसे चलते हैं। तो फिर यहाँ वो ड्रेस पहनकर, वो ताज पहनकर वो करती थी, वो जैसे कि प्रैक्टिस करती थी, वो अनुभव कराती थी कि हमने ये देखा। तो उस समय तो वे सारे विश्व महाराजन के रूप में दिखाई देते थे। तो हंसी की बात आपको सुनाए कि अब जिसके तन में वो शहजादी आई, वो उसको तो कुछ पता नहीं कि ये कौन है क्या है, परंतु वो शहजादी जब आती थी तो पहले पहले सबको देखती थी, सफ़ेद सफ़ेद ड्रेस, तो सफ़ेद सफ़ेद ड्रेस देखती थी तो हैरान हो जाती थी, क्योंकि सतयुग में कोई सफ़ेद ड्रेस तो पहनेगा नहीं, पहनेगा क्या? सतयुग में कैसी ड्रेस पहनेंगे? रंग बिरंगी, ताज सहित, आभूषणों सहित, क्या नहीं होगा। और यहाँ सब सफेद सफेद। तो पहले तो वो देख के आश्चर्य खाती है, एकदम आश्चर्य खाती है। फिर जैसे आगे जाती है तो देखती किसको चश्मा लगा हुआ है। फिर वो कहती ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि सतयुग में किसको चश्मा तो होता नहीं है। होगा चश्मा सतयुग में किसी देवता को, किसी देवता को देखा चश्मे के साथ नहीं। फिर अगर किसी को कोई दाढ़ी होगी मान लो तो वो कहते क्या है ये क्या है, क्योंकि दाढ़ी है अभी समझो गोरा रंग है और काली काली वो दाढ़ी है तो कैसा लगता है। तो फिर मतलब वो देखती थी हैरान हो जाती थी। फिर वो बुलाती थी कांता कांता, अब जिसको बुलाया ना उसको तो हार्ट फेल हो जाता था, क्योंकि कांता किसको बुलाते वहाँ ना ये सर्वेंट को, कांता जैसे नहीं रामू रामू बुलाते ना माई को बुलाते सर्वेंट को बुलाते, तो वहाँ कांता कहते सतयुग में कांता, कांता माना सर्वेंट। तो वो जैसे वो कांता सुनती थी कि मेरे लिए शहजादी ने कांता कहा तो उसको तो बहुत दुख होता था, क्या मैं कांता बनूंगी, क्या मैं दासी बनूंगी सतयुग में, क्योंकि दासी को कांता कहते हैं। तो बाबा ने फिर धीरे धीरे ये बंद करा दिया, नहीं तो हार्ट फेल हो जाते ऐसे। तो फिर जब वो शहजादी आती थी तो वो सफ़ेद जो कपड़े होते थे उसको भी उस पर भी कोई रंगीन चुन्नी वुन्नी डाल देते थे ताकि उसको लगे कि सफ़ेद ड्रेस नहीं है, तो चुन्नी डाल देते थे। फिर वो झूला ढूंढती थी, श्री कृष्ण जैसे झूला ढूंढता है, तो झूला देखती थी तुरंत वहाँ जा कर के बैठ जाती थी। फिर श्री कृष्ण आता था तो बॉल ढूंढता था, बॉल तो बॉल उसको जब तक न मिले तो वो बॉल ढूंढता रहता था बॉल का है। हमारी मोहिनी बहन थी ना, मोहिनी बहन जो मुन्नी जो दादी के साथ थी, उसको घुटनों में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब श्री कृष्ण आता था मना शहजादा आता था तो वो ऐसे दौड़ती थी जैसे कि घुटनों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं एकदम। तो हम कहते थे देखो ये तो वे कैसे दौड़ रही है, भाग करके किसी को गेंद फेंकेंगे, खेलना खेलपाल होता था। तो सतयुग कैसा होगा, सतयुग में हमारे महल कैसे होंगे, वहाँ फव्वारे कैसे होंगे, वहाँ बाग बगीचे कैसे होंगे, तो ये एक अंदर ही अंदर मन में वो ऐसा अनुभव करो कि मैं एक शहजादी हूँ और मैं ऐसे स्वर्ग की स्वर्ग में सैर कर रही हूँ, एक बहुत सुंदर अनुभव होगा आपको। और निश्चय और नशा ज़रूर चाहिए, पहले तो निश्चय चाहिए कि सतयुग में मैं ज़रूर जाऊँगी। फिर कई तो भाई बहन सोचते पता नहीं सतयुग आएगा या नहीं आएगा, तो है कोई जो सोचता पता नहीं सतयुग आएगा या नहीं आएगा, हाँ है कोई तो हाथ उठाओ, है अच्छा आपको निश्चय नहीं है, नहीं निश्चय नहीं है कि सतयुग आएगा या नहीं, पता नहीं विनाश होगा या नहीं होगा। हाँ ये भी संशय उठता है ना कईयों को, क्या ऐसे ही चलता रहेगा, पता नहीं पता नहीं, नहीं इतना निश्चय हो कि बाबा जो कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि भगवान खुद सत्य है, तो सत्य है तो सत्य ही कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, अब गॉड इज ट्रुथ कह देते हैं, फिर ये भी कह देते हैं ट्रुथ इज गॉड, जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड, तो ईश्वर है माना सत्य है, तो उसको बदल करके जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, तो ईश्वर कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है कह देते, तो ये तो कितना सत्य है, क्योंकि भगवान जो कह रहा है वो तो सत्य ही होगा, भगवान गारंटी कर रहा है, गारंटी कोई मनुष्य की नहीं है। आज मनुष्य भी कोई गारंटी करता है तो भी हम स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं, हाँ 3 साल की गारंटी है 3 साल, तो ये तो भगवान कर रहा है गारंटी, तो निश्चय भी हो, फिर उसका नशा भी चढ़ जाए, इतना चढ़ जाए और अपने आप को क्या समझे। फिर बाबा कहते फिर भक्ति मार्ग में आओ पूज्य स्वरूप। तो पूज्य स्वरूप भी मेरा कैसा होगा, मेरी मूर्ति कैसी होगी, रोज पूजा होने वाली, पूजा होने वाली मूर्ति या कभी कभी पूजा होने वाली मूर्ति, क्योंकि कभी कभी पूजा होने वाली भी मूर्तियां होती है। हफ्ता में एक दिन खाली दरवाजा खुलता है मंदिर का, है किसका तो साल में एक बार खुलता है, किसका तो चलो रोज खुलता है लेकिन थोड़ा समय खुलता है फिर बंद हो जाता है, और किसका तो हर एक्शन की पूजा होती है, उस समय भक्त आते हैं दर्शन करने। हम श्रीनाथ द्वारा गए थे तो श्रीनाथ द्वारा में सवेरे से लेकर रात तक अलग अलग जो श्री कृष्ण के एक्शन दिखाते हैं ना वो दिखाते। अभी वो सोया हुआ है कि पर्दा बंद है, हाँ अभी जागा है, श्री कृष्ण अभी जागा है। फिर उसके बाद वो स्नान करता है, उसका भी कृष्ण को दिखाते। फिर वो भोजन करता है, फिर खेलता है सब हर एक चीज का, और फिर वो खाता है तो इतने बड़े बड़े लड्डू, इतने बड़े बड़े लड्डू बनाते श्रीनाथ द्वारे में। तो मैंने देखा कैसे इतने बड़े लड्डू, तो मैंने कहा श्री कृष्ण इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा लड्डू खाएगा क्या इतना बड़ा लड्डू खाएगा क्या। लेकिन ऐसे बनाते वो तो फिर बाद में बिकता है ना, दुकानों में बिकता है, वो प्रसाद के रूप में बिकता है, लेकिन हर एक्शन का वो दर्शन होता है। फिर रात को सोता है उसका भी दर्शन होता है, हाँ वो भी जैसे पूजा होती है। तो मानो हर एक्शन का वो, हर एक्शन की पूजा। और कहाँ किसी का साल में एक बार खुलेगा दरवाजा, तो हमारा मंदिर कैसा होगा, हाँ हमारा मंदिर कैसा होगा बताइए, कैसा होगा साल में एक बार नहीं, भक्तों की भीड़ होगी हमारे सामने, हमारा वरदानी हाथ होगा, है ना, देवियों का देवताओं का एक हाथ वरदानी हाथ दिखाते, हमेशा देने वाला, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला। जो भी मेरे सामने आए कोई भी हाथ खाली न जाए, क्योंकि देवता है ना, तो देवता माना ही देने वाला। तो सतयुग में इतना ऊंचा है तो द्वापर में हमारी मूर्तियां कैसी होगी। तो वो मूर्ति रूप हूं मैं, उस रूप में अपने आप को देखो और कैसे पूजा हो रही है हमारी। 16 श्रृंगार हो रहा है, पूज्य देवता मैं कैसे सिंहासन पर विराजमान हूं और सबको दृष्टि दे रहा हूं। मनो अब जितना चाहो आप बहुत कुछ कल्पना कर सकते हो, लेकिन ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। उसको वास्तविकता के रूप में देखो, केवल हवाई किले नहीं बांध रहे हैं, ये वो सचमुच होगा। फिर संगम पर तो बहुत सहज है, ब्राह्मण जीवन हमारा कैसा हो, ब्रह्मा बाबा के निकट हो, रुद्रमाला में पिरोई जाने वाली आत्मा हो, बिल्कुल बाबा के नजदीक पहले नंबर की आत्मा। और जो ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस है वो सब याद करो, ब्राह्मण किसको कहा जाता है, ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस कहाँ से शुरू होती है, जो ब्रह्म से, ब्रह्मा या ब्रह्म से शुरू होती है। ब्रह्म से कौन से शब्द आते हैं, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म भोज, ब्रह्मचर्य, ये सब ब्रह्मा से संबंधित है। तो ये सारे ब्रह्मा से संबंधित, ये ब्रह्मा में गुण थे तो हम ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान है, पहली संतान है। वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो कितने 84 जन्म लेके वो कहेंगे पे अंतिम है, अंतिम है ये पीढ़ी, लेकिन हमारी तो पहली पीढ़ी है, ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं। तो ये जब हम सोचते हैं ना, तो उसी समय इतना नशा चढ़ता है, हर स्वरूप का नशा चढ़ाओ। पहले उसका निश्चय हो, उसका जो श्रेष्ठ स्वरूप हो उसका निश्चय हो, मैं हूँ, वो हूँ या नहीं हूँ ऐसे नहीं संशय करना है, तब उसका फायदा है ना। और फिर बाबा कहते फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप। मैं कैसे फरिश्ता हूँ? हड्डी मांस का शरीर नहीं है, लाइट का शरीर है। मैं उड़ रहा हूँ तब लाइट हूँ, बादलों से पार उस सूक्ष्म वतन का अनुभव कर रहा हूँ। दादी गुलजार से एक बार पूछा था, दादी सूक्ष्म वतन कैसा होता है? तो दादी ने कहा, हजारों चंद्रमाएं, चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा की लाइट होती है, तो एक चंद्रमा अगर पूर्णमासी पर आकाश में होता है तो कितनी चांदनी फैल जाती है। तो अगर ऐसे हजारों चंद्रमाएं हो तो कैसी लाइट होगी? ये जो एलईडी लाइट होती है ना, ये चंद्रमा की लाइट है जैसे, बिल्कुल इस प्रकार से एकदम चांदनी चांदनी। तो वो है सूक्ष्म वतन। फिर बादल ही बादल, सूक्ष्म वतन में वो बादल, तो बादलों के बीच में गुलजार दादी पहली आत्मा थी जिसने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया। उसके पहले किसी ने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार नहीं किया था। यज्ञ में सतयुग का करते थे, विनाश का करते थे, परम धाम का करते थे, अन्य सब साक्षात्कार करते थे, लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी नहीं किया है किसी ने। तो केवल गुलजार दादी वो पहली आत्मा थी जिसने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया। तो वो बैठी थी बाबा की याद में और एकदम से ध्यान में चली गई और उसने देखा सफेद सफेद बादलों के बीच में ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप, बिल्कुल लाइट के आकार में, जैसे बादलों के बीच में एकदम लाइट, चारों ओर लाइट ही लाइट। और उसने वो आकृति देखी ब्रह्मा बाबा की, तो पहले तो वो डर गई, इतना डर गई ना, जैसे ये लाइट लाइट है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, ब्रह्मा बाबा ही दिखाई दिया लेकिन वो लाइट के आकार में, और एकदम जैसे फरिश्ता। तो वो फरिश्ता क्या उसे पता भी नहीं था, तो वो रूप देखा। और जब वो एकदम से डर गई, वो डर गए, हाँ जैसे आप कोई जैसे भूत प्रेत कोई देखते तो डर जाते ना, तो वो फरिश्ता लाइट का रूप देख करके डर गए और एकदम से नीचे आ गए। तो नीचे आ गई तो उसने मम्मा को बताया ये सब, तो मम्मा ने कहा जाओ बाबा को बताओ। तो बाबा के पास आई तो बाबा भी उत्सुकता से सुनते रहे, उनको देखते रहे कि मेरा ही स्वरूप देखा उसने से लाइट में। तो फिर बाबा ने उनसे कहा कि आपने उनसे पूछा क्यों नहीं, उनसे आप पूछते ना कि आप कौन हो, लाइट का आकार तो देखा लेकिन वो कौन है उससे पूछा क्यों नहीं? तो कहा बाबा मैं डर गई हाँ मैं डर गई, तो मैं पूछूं भी कैसे। तो फिर बाबा ने उसको कहा कि अभी दोबारा जाओ, दोबारा जाओ, और अगर वो आकृति आपको दिखाई दे और वो मेरे जैसी है तो उनसे पूछो आप कौन हो। तो हिम्मत आ गई उसको, नहीं तो जैसे श्रीमत मिल गई ना कि आप पूछो। तो उसने उससे और जब फिर गई तो पूछा आप कौन हो, तब उस संपूर्ण ब्रह्मा ने कहा कि साकार लोक में जो ब्रह्मा है उसका मैं संपूर्ण रूप हूँ, और वो साकार ब्रह्मा ये स्वरूप बनेगा, ये स्वरूप बनेगा। तो ब्रह्मा बाबा को भी अनुभव हुआ कि मैं वो ऐसे संपूर्ण ब्रह्मा फरिश्ता बनूंगा। फिर तो बाबा को इतना नशा चढ़ गया था, बस उसी धुन में रहते थे, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, बिल्कुल लाइट, ऐसे लाइट होकर के चलते थे। फिर गुलजार दादी से पूछते थे कि कितना अंतर है उस स्वरूप और इस साकार स्वरूप में। तो पहले तो दादी ने बताया बाबा बहुत अंतर है, लेकिन फिर बीच बीच में बाबा फिर पूछते थे कि जाओ देख के आओ कितना अंतर है दोनों स्वरूपों के बीच में। तो दादी आके बताती थी कि वो अंतर कम होता जा रहा है, वो अंतर कम होता जा रहा है। और फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तब उसने देखा एक ही स्वरूप, वो साकार अव्यक्त में समा गया। ये अनुभव उसने किया कि उनका वो अव्यक्त रूप ही था, साकार जो अनुभूति थी वो खत्म हो गई। तो ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया बिल्कुल वो अव्यक्त होने का। तो हमको भी ऐसा ही अनुभव करना है। हाँ तो चलिए अभी हम उस स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो ये एक्सरसाइज ऐसे नहीं कि पांचों एक साथ करो, जरूरी नहीं है। हम तो अभी साकार में है, शरीर में है, तो शरीर में है तो जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो हाथ ऐसे करते फिर वापस करते ना, हाँ फिर वापस अपने ओरिजिनल स्थान पर आते या ओरिजिनल पोज में आते हैं। तो परम धाम जाकर वापस आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि परम धाम के बाद आपको सतयुग में जाना है। परम धाम से वापस आ सकते हैं साकारी लोक में। अब उसके लिए क्या करना होगा, जो बाबा ने कई बार ड्रिल कराई है, हाँ कैसे मैं शरीर में हूँ और मैं एकदम अंदर चली गई, देह से न्यारी हो गई। तो एक इनवर्ड जर्नी हम कहते हैं, अंतर की यात्रा, मैं आत्मा कहाँ हूँ, यहाँ प्रकृति के बीच में हूँ, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। तो पहले ये मालिकाना हक हमारे अंदर होना चाहिए, इस शरीर, ये शरीर मेरा है जरूर पर मैं नहीं हूँ, इनके द्वारा कर्म करने वाली शक्तियों पर मैं इनसे न्यारी हूँ। तो वो न्यारी स्थिति का भी अनुभव हो तो फिर सहज होगा आत्मा को मन बुद्धि से परम धाम जाना। ऐसे भी जरूरी नहीं है कि मैं आत्मा उड़ रही हूँ उड़ रही हूँ उड़ रही हूँ, हाँ अभी ये पांच तत्व मैंने पार किए और फिर अभी मैं सूर्य चांद सितारों तक पहुंची, अभी मैं उसे और आगे बढ़ रही हूँ, सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ, फिर परम धाम में नहीं, एक सेकंड में पहुंच सकते हो। शिव बाबा को सृष्टि पर आने में कितनी देर लगती है, वो धीरे धीरे आते हैं क्या, कैसे आते हैं, कितनी देर लगती है, बाबा कहते एक सेकंड। तो एक सेकंड में हम उस परम धाम में जा सकते हैं। ये यात्रा कोई वो रूप की नहीं है जो पाँव पाँव चलाना पड़े उसी वो यात्रा करने के लिए या हवाई जहाज में जाना पड़े, ये तो मन बुद्धि की यात्रा है। तो मन बुद्धि तो एक सेकंड में वहाँ पहुँच जाए। आप यहाँ बैठे अपने घर को याद कर रहे हैं तो कितनी देर लगी आपको घर जाने में, कितनी देर लगी, वो आपका कमरा, आपका बेडरूम, आपका किचन, आपका आंगन, आपका सिटिंग रूम या जो भी है, आप दफ्तर पहुँच गए तो कितनी देर लगी दफ्तर पहुँचने में, मन से पहुँचने में कितनी देर लगी, बस सोचा और पहुंच गए। इसी प्रकार सोचा और पहुंच गए परम धाम। तो कैसे पहुंच गए, मन और बुद्धि के ये दो पंख हैं, क्योंकि मन के साथ बुद्धि जरूर है, मन सोचता है बुद्धि निर्णय करती है। तो बुद्धि ने निर्णय किया कि बरोबर वो मेरा घर है, तो अपने घर में जाने में किसी से पूछना थोड़ी है। आपको अपने घर जाना है तो आप अपने युगल को फोन करके पूछेंगे क्या मैं घर आऊं, क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे, दरवाजा खोल देंगे, चाबी आपके पास है, फोन करके तो नहीं अंदर आएंगे ना, या ठोक करके तो नहीं अंदर आएंगे ना, सीधा आ जाएंगे। तो परम धाम जाने के लिए बाबा से पूछना है क्या, बाबा मैं आऊं परम धाम, नहीं, हमारे कमरे में आते हैं ना तो भी बाहर खड़े हैं परंतु दरवाजा तो समझो बंद है, तो बाहर से फोन करते हैं, हाँ आप मिल सकते हैं, और कई तो सीधा ही दरवाजा खोल के आ जाते, अधिकार समझते हैं। तो इसीलिए फोन करके नहीं आना, आपका अधिकार है परम धाम जाने के लिए। कोई से परमिशन नहीं लेनी है, हाँ, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपका घर है। तो अपने घर में जाना है, अपने घर में अपने आप को विराजमान करना है। तो कैसे जाएंगे, चलिए थोड़ा अभ्यास करेंगे। बैठ जाइए आप। पहले एक अंतर की यात्रा, फिर ऊपर की यात्रा। तो अंतर की यात्रा कैसे करेंगे, पहले तो आत्मनिश्चय चाहिए। मैं एक आत्मा हूं, एक दिव्य ज्योति हूं, महसूस करते जाए एक साथ। दिव्य ज्योति स्वरूप की महसूसता, ब्रह्मकुटी के बीच में चमकने वाली अजर अमर अविनाशी सत्ता, मेरा धाम परम धाम है। पहुंच जाओ मन बुद्धि से वहां, पहुंच जाओ उस अखंड ज्योति के महतत्व में। महसूस करें एक बेहद प्रकाश की दुनिया, सुनहरा लाल प्रकाश, बहुत सुंदर। और असीम शांति, एक बेहद प्रकाश की दुनिया, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। जहां शिव बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं, आओ बच्चे आओ, बाबा बुला रहे अपने ही घर में। मैं आत्मा शिव बाबा के पास पहुंच गई, रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, ऐसे है मेरे प्यारे बाबा। जो सत्यम शिवम सुंदरम है, इतना सुंदर प्रकाश, इतना प्यारा स्वरूप, बाबा से शक्ति लेकर फिर वापस आ जाए। फिर उस शक्ति से इंद्रियों द्वारा कर्म करे, तो थोड़ी देर के बाद सतयुग की सैर करें। मैं आत्मा उस सतयुगी दुनिया में पहुंच गई। जहां पांचों ही तत्व अपने सतो प्रधान अवस्था में है, इतनी साफ नदियां इतने सुंदर देवी देवताएं हैं, चारों ओर पुष्पक विमान, बेहद बगीचे, इन बगीचों में अनेक रंग बिरंगे प्रकाश वाले फव्वारे, सब स्मृति में लाओ, कैसे सुंदर फूल और फल कितना प्यारा है हमारा सतयुग। शिव बाबा को साथी बनाकर ले जाओ वहां, शिव बाबा आप हमको ऐसी दुनिया में ले जा रहे हो उस स्वर्ग के सामने कुछ और फीका है। अब उसी दुनिया की सैर करो। मैं विश्व महाराजन महारानी श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान सतो प्रधान डबल ताजधारी शिव बाबा ने ऐसा हमें बनाया है। नशा चढ़ाओ, कलयुग से भेंट नहीं करना, बस उसी दुनिया में अपने आप को देखो। उसी दुनिया में अपने आप को महसूस करो। यही मेरी सच्ची दुनिया है। फिर आ जाओ वापस और देवता समान अनुभव कर हर कर्म करो। देखना, बोलना, सुनना, चलना, देवताएं कैसे चलते हैं, मैं वही देवता हूं। अब बाबा हमारे लिए स्वर्ग रच रहे, मीठे बाबा हम उस स्वर्ग का मालिक जरूर बनेंगे। फिर चले जाओ मध्यकाल में। मैं आत्मा पूज्य स्वरूप भक्त हमारी पूजा कर रहे हैं, मैं वरदानी बनकर सबको वरदान दे रही हूँ, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना है, सब सुखी हो। के अंदर शांति हो, सबका कल्याण हो, अब आ जाओ संगम युग पर। मैं शिव बाबा के साथ हूँ, शिव बाबा मेरा साथी भी है और साथ भी है। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है। हम कितने ऊंचे थे, अब फिर ऊंचा बन रहे हैं, और इतना नशा चढ़ जाए। बाबा आपने क्या से क्या बना दिया, बाबा मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। मैं सदा आपके साथ हूँ और साथ रहूंगी। आप गाइड बनकर हमें लेने आए हो बाबा, हम आप समान बनेंगे। ऐसा सुंदर ब्राह्मण जीवन जो सारे कल्प में नहीं मिलेगा, यही रे तुल्य जीवन, अमूल्य जीवन। बाबा आपके साथ वापस घर चलेंगे, फिर आप हमें नई दुनिया में भेज देंगे। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, धन्यवाद। हम धन्य हो गए, तुम्हें पाकर सब कुछ पा लिया बाबा। अब फरिश्ता बन घर जाना है, डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव कर घर जाना है, यही मेरा लक्ष्य है। शांति
शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स। अब यही अभ्यास जैसा बाबा ने अटेंशन दिलाया है हर घंटे हमें करना है, कभी 5 मिनट कभी 3 मिनट, परंतु करना है। यहां से आप सभी पक्का करके जाएंगे।